और नीज ये पेश गोई कि आज इसके घर में चार लड़के पैदा होंगे और अब्दुल्ला गजनवी अभी जिंदा होगा कि चौथा लड़का पैदा हो जाएगा। किस जोर से बजरिया इश्तिहारात शाया की गई थी और कैसी सफाई से पूरी हुई, मगर कौन इस पर ईमान लाया। और ये सब निशान सिर्फ दो चार नहीं बल्कि 150 से भी ज्यादा निशान है। अगर उन निशानों के गवाह जिन्होंने ये निशान देखे जो अब तक जिंदा मौजूद हैं सफ बांध कर खड़े किए जाएं, तो एक भारी गवर्नमेंट के लश्कर के मुआफिक उनकी तादाद होगी। अब किस कदर जुल्म है कि इस कदर निशानों को देखकर फिर कहे जाते हैं कि कोई निशान जाहिर नहीं हुआ, और मौलवियों के लिए तो खुद उनकी बेइल्मी का निशान उनके लिए काफी था, क्योंकि हजारों रुपए के इनामी इश्तिहार दिए गए कि अगर वो बिलमुकाबल बैठकर किसी सूरत कुरानी की तफसीर अरबी फसीह बलीग में मेरे मुकाबल पर लिख सके तो वो इनाम पाएं, मगर वो मुकाबला न कर सके तो क्या ये निशान नहीं था कि खुदा ने उनकी सारी इल्मी ताकत सल्ब कर दी। बावजूद इसके कि वो हजारों थे तब भी किसी को हौसला ना पड़ा कि सीधी नीयत से मेरे मुकाबल पर आवे और देखे कि खुदा ताला इस मुकाबला में किसकी तायीद करता है। फिर एक और निशान उनके लिए था कि उन्होंने मेरे तबाह करने के लिए जान तोड़ कोशिशें की और कोई मकर और फरेब उठा ना रखा जो उसको इस्तेमाल न किया, और मुखालिफत के इजहार में तमाम जोर अपना अनवा अकसाम के वसाइल से खर्च कर दिया और नाखूनों तक जोर लगाया और जायज नाजायज तरीक सब इख्तियार किए और सब शतम और तहकीर और तोहीन से पूरा काम लिया, हुकाम तक मुकदमात पहुंचाए, खून के इल्जाम लगाए, लेकिन आखिर नतीजा ये हुआ कि जो जमात पहले दिनों में 40 आदमियों से भी कम थी आज 70,000 के करीब पहुंच गई। और बावजूद सख्त मुखालिफाना मुजाहमतों के इब्राहिम अहमदिया की वो पेशगोई पूरी हुई जो आज से 20 बरस पहले दुनिया में शाया हो चुकी थी, जिसका खुलासा यह था कि लोग मुजाहमतें करेंगे और इस सिलसिला को नाबूद करना चाहेंगे, लेकिन खुदा उनके इरादों के मुखालिफ करेगा और इस सिलसिला को एक बड़ी जमात बना देगा, यहां तक कि यह सिलसिला बहुत ही जल्द दुनिया में फैल जाएगा और उन लोगों के इरादों पर लानत का दाग जाहिर हो जाएगा जिन्होंने रोकना चाहा था। अब बतलाओ कि क्या अब तक खुदा की मौजाना तायीद साबित न हुई? अगर ये कारोबार किसी मक्कार का होता तो क्या उसका नतीजा यही होना चाहिए था? उठो और दुनिया में इस बात की तलाश करो कि कौन मक्कार तारीख के सफर से तुम बतला सकते हो जिसके हिलाक करने के लिए ये कोशिशें की गई और फिर वो तबाह ना हुआ। है सख्त दिल कौम, तुम्हें किसने चांद पर थूकना सिखलाया? क्या तुम उससे लड़ोगे जिसने जमीन और आसमान को पैदा किया? अपने दिलों पर गौर करो कि कभी खुदा ने किसी झूठे के साथ ऐसी रिफाकत की कि कौमों के इरादों और कोशिशों को उसके मुकाबले पर हर एक मैदान में नाबूद कर दिया और उनको हर एक को उसके हमले में नामुराद रखा। बाज आ जाओ और उसके कहर से डरो और यकीनन समझो कि तुम अपनी मुफसदाना हरकत पर मोहर लगा चुके। अगर खुदा तुम्हारे साथ होता तो इस कदर फरेबों की तुम्हें कुछ भी हाजत ना होती, तुम में से सिर्फ एक शख्स की दुआ ही मुझे नाबूद कर दे, मगर तुम में से किसी की दुआ भी आसमान पर न चढ़ सकी, बल्कि दुआओं का असर यह हुआ कि दिन ब दिन तुम्हारा ही खात्मा होता जाता है। तुमने मेरा नाम मुसैलमा का जाब रखा, लेकिन मुसैलमा तो वो था जिसका एक ही जंग में खात्मा हो गया, मगर तुम तो 20 बरस तक जंग किए गए और हर जंग में नामुराद रहे। क्या सच्चों और मोमिनों के यही निशान हुआ करते हैं? क्या तुम देखते नहीं कि तुम घटते जाते और हम बढ़ते जाते हैं? अगर तुम्हारा कदम किसी सच्चाई पर होता तो क्या इस मुकाबला में तुम्हारा अंजाम ऐसा ही होना चाहिए था? किसने तुम में से मुबाहला किया कि आखिर उसने जिल्लत या मौत का मजा न चखा? अव्वल तुम में से मौलवी इस्माइल अलीगढ़ ने मेरे मुकाबले पर कहा कि हम में से जो झूठा है वो पहले मर जाएगा, तो तुम जानते हो कि शायद 10 साल के करीब हो चुके कि वो मर गया और अब खाक में उसकी हड्डियां भी नहीं मिल सकती। फिर पंजाब में मौली गुलाम दस्तगीर कसूरी उठा और अपने तई कुछ समझा और उसने अपनी किताब में मेरे मुकाबले में यह लिखा कि हम दोनों में से जो झूठा है वो पहले मर जाएगा। सो कई साल हो गए कि गुलाम दस्तगीर भी मर गया, वो किताब छपी हुई मौजूद है। इसी तरह मौलवी रशीद अहमद गंगोही उठा और एक इश्तिहार मेरे मुकाबले पर निकाला और झूठे पर लानत की और थोड़े दिनों के बाद अंधा हो गया। देखो और इबरत पकड़ो। फिर बाद इसके मौली गुलाम मोहियुद्दीन लखोके वाला उठा, उसने भी ऐसे ही इल्हाम शाया किए, आखिर वो भी जल्द दुनिया से रुखसत हो गया। फिर अब्दुल्ला गजनवी उठा और बिलमुकाबिल मुबाहला करके दुआएं की कि जो झूठा है खुदा की उस पर लानत हो, बरकतों से महरूम हो, दुनिया में उसकी कबूलियत का नामो निशान ना रहे। तो तुम खुद देख लो कि इन दुआओं का क्या अंजाम हुआ और अब वो किस हालत में और हम किस हालत में हैं। देखो इस मुबाहला के बाद हर एक बाब में खुदा ने हमारी तरक्की की और बड़े बड़े निशान जाहिर किए आसमान से भी और जमीन से भी, और एक दुनिया को मेरी तरफ रुजू दे दिया, और जब मुबाहला हुआ तो शायद 40 आदमी मेरे दोस्त थे। यहाँ निशान देकर हुजूर हाशिया में फरमाते हैं, अब्दुल हक का ये मुबाहला भी इस बात पर दलालत करता था कि उसको खुदा और रसूल की कुछ भी परवाह नहीं, क्योंकि जबकि अल्लाह ताला ने साफ फरमा दिया कि ईसा फौत हो गया और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाही दे दी कि मैं उसको मुर्दा रूहों में देख आया हूँ, और सहाबा ने इजमा कर लिया कि सब नबी फौत हो चुके हैं, और इब्ने अब्बास ने बुखारी में तवफ्फा के माने भी मौत कर दिए, तो इस सूरत में मुबाहला के माने बजुर्ग के क्या थे कि मैं खुदा और रसूल को नहीं मानता। अब हम फिर मतन की तरफ रुजू करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, जब मुबाहला हुआ तो शायद 40 आदमी मेरे दोस्त थे, और आज 70,000 के करीब उनकी तादाद है, और माली फतूहात अब तक 2,00,000 रुपए से भी ज्यादा, और एक दुनिया को गुलाम की तरह इरादतमंद कर दिया, और जमीन के किनारों तक मुझे शोहरत दे दी। लुत्फ तब हो कि अव्वल कादियान में आओ और देखो कि इरादतमंदों का लश्कर किस कदर इस जगह खेमा जन है, और फिर अमृतसर में अब्दुल हक गजनवी को किसी दुकान पर या बाजार में चलता हुआ देखो किस हालत में चल रहा है। बड़ा अफसोस है कि खुदा की ताकत खुले खुले तौर पर मेरी ताईद में आसमान से नाजल हो रही है, मगर ये लोग शिराख्त नहीं करते। ट्रांसवाल और दौलत बरतानिया की सुलह हो गई, मगर इन लोगों का अब तक जंग बाकी है। ट्रांसवाल ने अकलमंदी करके अंग्रेजी गवर्नमेंट को ताकतवर पाया और इताअत कबूल कर ली, मगर ये लोग अब तक आसमानी गवर्नमेंट के बागी हैं, खुदा के निशानों को नहीं देखते, उम्मत ज़ईफ़ा की जरूरत पर नजर नहीं डालते, सलीबी गलवा का मुशाहिदा नहीं करते, और हर रोजा इत्तदाद का गर्म बाजार देखकर उनके दिल नहीं कांपते। जब उनको कहा जाए कि ऐन जरूरत के वक्त में, ऐन सदी के सर पर, ऐन गलबा स्लीप के अयाम में यह मुजद्दद आया जिसका नाम इन मानो से मसीह माऊद है कि जो इसी सलीबी फितना के वक्त में जाहिर हुआ, तो कहते हैं कि हदीसों में है कि इस उम्मत में 30 दज्जाल आएंगे कि ताउम्मत का अच्छी तरह खात्मा कर दे। क्या खूब अकीदा है। ऐ नादानों, क्या इस उम्मत की ऐसी ही फूटी हुई किस्मत और ऐसे ही बद ताले हैं कि उनके हिस्से में 30 दज्जाल ही रह गए। दज्जाल तो 30, मगर तूफान सलीब के फिरौ करने के लिए एक भी मुजद्दद ना आ सका। ज़हे किस्मत, खुदा ने पहली उम्मतों के लिए तो पैदर पै नबी और रसूल भेजे, लेकिन जब इस उम्मत की नौबत आई तो इसको 30 दज्जाल की खुशखबरी सुनाई गई, और फिर यह भी साबित शुदा पेश गोई है कि आखिरकार इस उम्मत के उलमा भी यहूदी बन जाएंगे, और यह भी जाहिर है कि अब तक लाखों आदमी मुर्तद हो चुके जिन्होंने दीन इस्लाम को तर्क कर दिया। बस क्या इस दर्जा की जरालत तक अभी खुदा खुश ना हुआ और उसके दिल को सहरी ना हुई जब तक उसने खुद इसी उम्मत में से सदी के सर पर एक दज्जाल भेज ना दिया। खूब उम्मत मरहूमा है जिसके हक में ये इनायात है। और फिर यह के बावजूद है कि इस दज्जाल के मारने के लिए मोमिनों के सजदात में नाक घिस गए, लाखों दुआएं और तदबीरें उसकी हिलाकत और तबाही के लिए की गई, मगर खुदा नहीं सुनता, मुंह फेर लेता है। बल्कि बरक्स इसके, ये दज्जाल बराबर 30 बरस से तरक्की कर रहा है और दुनिया में आसमान के नूर की तरह फैलता जाता है। इससे तो साबित होता है कि ये उम्मत नहायत ही बदकिस्मत है, और खुदा का पुख्ता इरादा है कि इसको हिलाक कर दे। ये कैसी मूरत गज़बे इलाही है कि एक तो दज्जाल के कब्जा में दी गई और अब तक सच्चे मसीह और मेहदी का ना आसमान पर कुछ पता मिलता है न जमीन पर। हजार चीखें भी मारो वो दोनों गुमशुदा जवाब भी नहीं देते कि जिंदा है या मुर्दा और किधर है और कहाँ। नबियों के मुकर्रर करदा वक्त भी गुजर गए और उम्मत को ईसाई मजहब ने खा लिया, मगर न खुदा को रहम आया और न मेहदी और मसीह के दिल नरम हुए। बाज़ नादान कहते हैं कि बेशक कुरान से मसीह इब्ने मरियम की वफात साबित होती है, और सूरत नूर और सूरत फातिहा वगैरह सूरतों पर नजर गायर करके यही मालूम होता है कि इस उम्मत के कुल खुलफा इसी उम्मत में से होंगे। और हम मानते हैं कि सलीबी मजहब ने भी बहुत कुछ फितना पैदा किया है, और यह वो मुसीबत है कि इस्लाम पर इससे पहले कभी नहीं आई। वक्त और जमाना बेशक कैसे मुसले को चाहता है जो सलीबी तूफान का मुकाबला करे, और सदी का सिर भी इसी को चाहता है, और सदी में से भी करीबन पांचवा हिस्सा गुजर गया। सब कुछ सच, लेकिन हम क्यों कर मान लें, क्योंकि इस शख्स के अकायद हमारे और वहां के अकायद से मुख्तलिफ हैं। अगर ये उनका हम जबान होता तो हम कबूल कर सकते हैं। अब देखो कि ये ख्यालात उनके किस कदर दीवानगी के हैं। जब आप ही कायल हैं कि ईसा इब्ने मरियम की हयात और नजूल में उलमा गलती पर हैं, फिर खुदा का मुरसल क्यों कर इस गलती को मान लें। मां सिवाय इसके जबकि मसीह माऊद का नाम हकम है तो उसके लिए जरूरी है कि इस्लाम के 72 फिरकों में फैसला करें और बाज ख्यालात रद्द करे और बाज की तस्दीक करे। ये क्यों कर हो सके कि जो हकम कहलाता है वो तुम्हारा सब रत्न याबिस का जखीरा मान ले, फिर उसके वजूद से फायदा क्या हुआ, और किस वजह से उसका नाम हकम रखा गया। इसलिए जरूरी था कि वह रत याबिस के जखीरा में से बाज रद्द करे और बाज कबूल करे, और अगर सब कुछ कबूल करता जाए तो फिर हकम किस बात का हुआ। मसलन देखो, तुम्हें एक फिरका तो इस बात का कायल है कि ईसा इब्न मरियम दोबारा आसमान से वापस आएगा, मगर इसके मुकाबले पर मोतजिला और बाज सूफिया का यह अकीदा है कि दोबारा आना गलत है, बल्कि मसीह इब्न मरियम फौत हो चुका है और आने वाला इसी उम्मत में से होगा। अब बतलाओ कि मैंने कौन सी ज्यादती और मुखालफत इस्लाम की। सिर्फ ये किया कि खुदा से वही पाकर मुसलमानों के दो अकीदों में से एक अकीदे को रद्द कर दिया और उसको मुखालिफ कुरान और मुखालिफ इजमा सहाबा बतलाया, और दूसरे अकीदा की तस्दीक की और उसके मुआफिक अपने तई जाहिर किया। क्या हकम के लिए जरूरी था कि तुम्हारे कई फिरकों में से सिर्फ अहले हदीस की बात मानता या सिर्फ हनफियों की बात कबूल करता और बाकी तमाम फिरकों के तमाम इत्तेहादी अकायद को रद्द कर देता? तो इस सूरत में तो तुम ही हकम ठहरे न वो। हाँ, सच है कि हर एक अकीदा जब आदत में दाखिल हो जाता है तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, सच है कि हर एक अकीदा जब आदत में दाखिल हो जाता है तो उसका छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यही वजह है कि हजरत मसीह जो मुद्दत के फौत हो चुके, आप लोगों के ख्याल में वो अब तक बजस्मे अंसरी आसमान पर बैठे हैं, मगर सच तो यह है कि आसमान पर नहीं बल्कि आप लोगों के दिल पर बैठे हैं और पुराने अकीदों की वजह से हरदम जबान पर नजूल कर रहे हैं। तुमसे पहले यहूदियों को भी यही बला पेश आई थी कि उनके नजदीक सही अकीदा यही था कि इलियास आसमान से नाजिल होगा, तब मसीह आएगा। लेकिन जब हजरत मसीह आए और इलियास आसमान से नाजिल ना हुआ तो यहूदियों ने तकरीब का वो शोर मचाया कि आप लोगों के शोर और उनके शोर में फर्क करना मुश्किल है। यहां निशान देकर हुजूर आशिया में फरमाते हैं, यहूदियों और ईसाइयों और मुसलमानों पर बबायस उनके किसी पोशीदा गुनाह के ये इत्तला आया कि जिन राहों से वो अपने मौहूद नबियों का इंतजार करते रहे उन राहों से वो नबी नहीं आए बल्कि चोर की तरह किसी और राह से आ गए। अब हम दोबारा मतन की तरफ रुजू करते हैं। हुजूर फरमाते हैं, और बड़े जोश से हजरत ईसा से यहूदियों ने सवाल किया कि अभी इलियास तो दोबारा दुनिया में आया नहीं, तो तुम क्यों कर सच्चा मसीह ठहर सकते हो? तब उन्होंने जवाब दिया कि इलियास तुम में मौजूद है जो यूहन्ना नबी है यानी याहिया, मगर किसी ने यह जवाब पसंद न किया और आज तक हजरत ईसा को इसी वजह से काफिर कहा जाता है कि उन्होंने यहूदियों के इजमाई अकीदा के बरखिलाफ राय जाहिर की। और अजीब तर यह बात है कि हमारे मुखालिफ कत नजर इससे जो हमारी दावत को मान ले वो अपना जखीरा जुनून शकूक का हमें मनवाना चाहते हैं, हालांकि वो उस खुदा से बिल्कुल बेखबर हैं जिससे निजात मिलती। जिस हालत में खुदा ने हम पर फजल करके हमें अपनी तरफ से नूर बख्शा, जिस नूर से हमने उसको पहचाना और हमें निशान अता फरमाए, जिन निशानों से हमने उसकी हस्ती और सिफात कामला पर यकीन कर लिया, तो क्यों कर हम उस नूर और मारिफत और यकीन को अपने आप से दूर कर दें? हम सच सच कहते हैं और खुदा हमारे इस कौल पर गवाह है, अगरचे खुदाए ताला की हस्ती और इस्लाम की सच्चाई का यकीन कुरान के जरिए से हमारे पास आया, अगर खुदा ने अपनी वही ताज़ा के जरिए से हमें अपनी खास चमकारें दिखलाई, यहां तक कि हमने उस खुदा को देख लिया जिससे एक दुनिया गाफिल है। उसके दिलकश निशानों ने जो मेरे इल्म में हजारों तक पहुंच गए, वो दुनिया को अभी सिर्फ 150 निशान से इतला हुई। मुझ में वो यकीन और बसीरत और मारिफत का नूर पैदा किया जो मुझे इस तारीख दुनिया से हजारों कोस दूर तक खींच कर ले गया। अब अगरचे मैं दुनिया में हूं मगर दुनिया में से नहीं हूं, अगर दुनिया मुझे नहीं पहचानती तो कुछ ताज्जुब नहीं, क्योंकि हर एक चीज जो बहुत दूर और बहुत बुलंद है उसका पहचानना मुश्किल है। मैं कभी उम्मीद नहीं करता कि दुनिया मुझसे मोहब्बत करे, क्योंकि दुनिया ने कभी किसी राष्ट्रवाद से मोहब्बत नहीं की। मुझे इससे खुशी है कि मुझे गालियां दी गई, दज्जाल कहा गया, काफिर ठहराया गया, क्योंकि सूरत फातिहा में एक मख्फी पेशगोई मौजूद है और वो ये कि जिस तरह यहूदी लोग हजरत ईसा को काफिर और दज्जाल कहकर मग़ज़ूब अलैहिम बन गए, बाज मुसलमान भी ऐसे ही बनेंगे। इसीलिए नेक लोगों की ये दुआ सिखलाई गई कि वो मुन्नम अलैहिम में से हिस्सा लें, मग़ज़ूब अलैहिम न बने। सूरत फातिहा का आला मकसूद मसीह माऊद और उसकी जमात और इस्लामी यहूदी और उनकी जमात और ज़ालिम यानी ईसाइयों के जमाना तरक्की की खबर है। सो किस कदर खुशी की बात है कि वो बातें आज पूरी हुई।